the stage is set. We're just about ready to begin. Round one, the heavyweight championship of the world. Ali ready, Foreman ready. We're waiting for the opening bell.
29 अक्टूबर 1974, जैसे ही हैवीवेट बॉक्सर मोहम्मद अली ने ज़ाइर की राजधानी किनशासा के 20th ऑफ मई स्टेडियम की रिंग में कदम रखा, 60,000 दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम ने एक स्वर में गर्जना की, अली अली बोमाये, अली अली बोमाये। मतलब था, अली उसे जान से मार दो। समय था सुबह 3:45। जी हां, आपने सही सुना, सुबह 3:45। क्या थी इसकी वजह, हमने पूछा मोहम्मद अली के बॉक्सिंग करियर को नजदीक से देखने वाले नॉरिस प्रीतम से।
अब यूएस में बाउट नहीं कराई, लेकिन देखने वाले तो बहरहाल यूएस में ही थे, तो जो टाइमिंग थी वो सूट करती थी कि उस वक्त वहाँ पीक आवर्स हों। जैसे कि हम आमतौर पे अक्सर देखते हैं कि खाली स्टेडियम में 2-3 बजे भारत में क्रिकेट हो रहा है, और हम सोचते हैं क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो ग्राउंड में देखने वालों के लिए नहीं होता, बल्कि टीवी स्क्रीन में, बेशक आप उसे इडियट बॉक्स कहें, लेकिन उस पर बैठ के देखने वालों के लिए होता है। इसलिए वो 4 बजे बाउट रखी गई थी और लाखों लोगों ने देखा, और अंदर स्टेडियम में उस हॉल में 60,000 लोग, जो आज भी एक बड़ी तादाद मानी जाती है। उस वक्त सोचिए कि 1974 में क्या रहा होगा वो, जबकि ना ट्विटर था, ना गूगल था, ना इंटरनेट था, ना एक दूसरे को लोगों ने बताया। अगर आज की तारीख में वो बाउट होती तो मेरे ख्याल है 1 महीने तक वो ट्रेंड करती रहती बाउट ही ट्विटर पे।
इससे पहले कि मुकाबला शुरू होता, अली ने जॉर्ज फोरमैन से कहा, तुम मेरे बारे में तब से सुन रहे हो जब तुम बच्चे हुआ करते थे, अब मैं तुम्हारे सामने साक्षात खड़ा हूँ, तुम्हारा मालिक, मुझे सलाम करो। उस समय लोगों को पता नहीं चल पाया था कि अली कह क्या रहे हैं। लोगों ने मोहम्मद अली को कुछ कहते हुए जरूर सुना था, और उनके होठ जॉर्ज फोरमैन के कान से सिर्फ 12 इंच दूर थे। फोरमैन की समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। उन्होंने अली के ग्लव्स से अपने ग्लव्स टकराए, मानो कह रहे हों शुरू करें। तभी अली ने अचानक अपनी दोनों कलाइयों को सीधा किया, सावधान की मुद्रा में आए, आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। पहला मुक्का अली ने चलाया और उनके दाहिने हाथ का पंच फोरमैन के माथे के बीचों बीच लगा। राउंड खत्म होते होते फोरमैन अली को धकियाते हुए रिंग के रस्सों की तरफ ले गए। अली पीठ के बल रस्सों पर गिरकर फोरमैन के बलिष्ठ मुक्कों का सामना करने लगे। बगल में बैठे अली के कोच एंजेलो डंडी पूरी ताकत से चिल्लाए, गेट अवे फ्रॉम देयर।
Shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Looking to drop that left hook. Zaire, Africa. That punch did no damage. That one did. Vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali, but a straight left jab thrown by Foreman. Has Ali in the corner. Ali dances.
मुकाबला शुरू होने से पहले ही मोहम्मद अली फोरमैन पर जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव बना चुके थे। एक दिन पहले ही उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में डींग हाकी थी।
I'm so fast, I can run through a hurricane and don't get wet. I'm so fast, last night I cut the light off in my bedroom.
मैं इतना तेज हूँ कि अगर मैं तूफान के बीच में दौड़ूं तब भी मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे। मेरी तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल रात मैंने स्विच ऑफ किया, और इससे पहले कि अंधेरा होता मैं कूद कर अपने बिस्तर पर पहुंच चुका था।
लेकिन इस मुकाबले में पहले 1 मिनट तक अली ने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर उन्होंने फोरमैन पर शाब्दिक बाण चलाने शुरू कर दिए। अली अपनी आत्मकथा द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी में लिखते हैं,
मैंने फोरमैन से कहा, कम ऑन चैंप, अब तुम्हारा मौका है, मुझे दिखाओ तो सही क्या क्या है तुम्हारे पास। अभी तक तुम किंडरगार्टन के बच्चों पर मुक्के बरसाते आए हो। ये कहते ही मैंने एक मुक्का उसके मुंह के बीचों बीच जड़ दिया। मैंने कहा, ये लो, एक और झेलो। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं अब तक का सबसे तेज हैवीवेट मुक्केबाज हूं। आधा राउंड खत्म हो चुका है और तुम एक भी ढंग का मुक्का मुझे मार नहीं पाए हो।
Muhammad is allowing Foreman to come in on him, talking to him. Angelo Dundee screaming from the corner, Ali, get off those ropes. But Ali continues to talk to Foreman.
Ali अपने पीछे बन्नी ब्राउन की आवाज सुन पा रहे थे, डांस चैंपियन डांस। एंजेलो डंडी भी चिल्ला रहे थे, मूव अली मूव, गेट ऑफ द रोप्स चैंप। अली लिखते हैं,
मैं अपने लोगों से कैसे कहता कि मेरा रस्सों से उठने का कोई इरादा नहीं है। राउंड खत्म होते होते मैंने उठकर जॉर्ज के सिर पर 3 सीधे जैब लगाए। मैंने ये भी सोचा कि मैं अपना शिक्षा देने का प्रोग्राम जारी रखूं, नहीं तो ये सोचने लगेगा कि इसके मुक्कों ने मेरी बोलती बंद करा दी। मैंने मुक्का चलाते हुए फोरमैन पर कटाक्ष किया, बस तुम्हारे मुक्कों में इतना ही दम है, इससे ज्यादा तेज तुम नहीं मार सकते।
जेरी आइजनबर्ग उस समय एक युवा संवाददाता थे और न्यू जर्सी स्टार लेजर ने उन्हें यह मुकाबला कवर करने के लिए किनशासा भेजा था। आइजनबर्ग ने बीबीसी को बताया।
Here we go.
When the bell rang, Ali got hit, so he immediately retreated to the ropes. This is the genesis of the world famous rope-a-dope.
जैसे ही राउंड शुरू होने की घंटी बजी, मोहम्मद अली तुरंत रस्सों की तरफ चले गए। अली की दुनिया भर में मशहूर रोप ए डोप तकनीक की शुरुआत यहीं से हुई। फोरमैन के दिमाग में ये बात घर कर चुकी थी कि वो किसी भी ग्लव को अपने मुक्कों से भेद सकते हैं। मुक्केबाजी में अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हैं तो पॉइंट जीतने से ज्यादा आपका नुकसान होता है। थोड़ी ही देर में फोरमैन की बाहों में दर्द शुरू हो गया। इस दौरान अली उनसे लगातार बातें कर रहे थे जिससे उनका गुस्सा और भड़क उठा।
दिलचस्प बात यह थी कि जब भी अली फोरमैन पर हमला करते स्ट्रेट राइट मारते। जाने माने साहित्यकार नॉर्मन मेलर भी उस समय ये भिड़ंत देख रहे थे। वो अपनी किताब द फाइट में लिखते हैं,
अली ने पिछले 7 सालों में इतने प्रभावशाली मुक्के नहीं बरसाए थे। चैंपियन आमतौर से दूसरे चैंपियनों पर दाहिने हाथ से मुक्का नहीं मारते, कम से कम शुरू के राउंड्स में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे मुश्किल और सबसे खतरनाक पंच होता है। मुक्केबाजी के जानकार जानते हैं कि दाहिने हाथ को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, बाएं हाथ से कम 1 फीट ज्यादा। पिछले कई सालों में किसी ने फोरमैन के प्रति ऐसा असम्मान नहीं दिखाया था।
मोहम्मद अली अपनी आत्मकथा में लिखते हैं,
मैं फोरमैन को इतनी जोर से पकड़ता हूं कि मैं उसके दिल की धड़कनों तक को साफ सुन सकता हूं। उसकी सांस भी रुक रुक कर आ रही है, जो संकेत इस बात का है कि मेरे मुक्के काम कर रहे हैं। मैं उससे फुसफुसा कर कहता हूं, यू आर इन बिग ट्रबल बॉय, अपनी आंख की ओर देखो, फूल कर कुप्पा हो गई है और अभी 8 राउंड बाकी हैं, 8 और। और देखो तुम कितने थक गए हो, मैंने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है और तुम हांफने लगे हो। सैडलर पीछे से फोरमैन से कुछ कहना चाह रहा है, आर्चो मूर भी चिल्ला रहा है, लेकिन मुझे पता है इस समय फोरमैन सिर्फ मेरी ही सुन रहा है।
जैसे ही 8वां राउंड शुरू हुआ, अली ने नोट किया कि फोरमैन के मुक्कों की गति धीमी पड़ चुकी है। अली ने पूरी ताकत लगाकर फोरमैन के जबड़े पर स्ट्रेट राइट रसीद किया। पूरे स्टेडियम ने स्तब्ध होकर देखा कि फोरमैन स्लो मोशन में जमीन की तरफ गिर रहे हैं।
Suddenly, Ali, who had hit him a couple of times, took like 2 steps off the ropes, and he hit him, and he hit him again, and then he was back in the corner, and Foreman, more frustrated, now is having trouble, in my view, lifting his arms.
अचानक अली ने रस्सों से उठकर 2 कदम आगे बढ़ाए और फोरमैन को बहुत तेज मुक्का मारा। फिर उन्होंने राइट और लेफ्ट हुक के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। जब अली का दूसरा राइट फोरमैन के जबड़े पर पड़ा तो हम सब ने रुकी हुई सांसों के साथ देखा कि फोरमैन धराशायी हो रहे हैं। मैंने इससे पहले किसी को स्लो मोशन में इस तरह से गिरते नहीं देखा था।
ये बॉक्सिंग इतिहास की सबसे बड़ी अपसेट थी। 25 वर्षीय और 118 किलो के जॉर्ज फोरमैन के सामने 32 साल के मोहम्मद अली को किसी ने कोई चांस नहीं दिया था, लेकिन अली ने असंभव कर दिखाया।
118 किलो का आदमी अगर किसी को चैलेंज करेगा तो वो जाहिर है कि वो बड़ी बात मानी जाएगी। और कई महीनों से वो इसकी प्रैक्टिस या ट्रेनिंग कर रहे थे, और वो जो वुड कटर्स के एक वो टेक्निक होती है कि कुल्हाड़ा लेके लकड़ी काटने वाली, वो पूरे दिन भर लगे रहते थे। क्योंकि जो 118 किलो का आदमी अगर खाली 3 दफ़ा जिसे शेडो बॉक्सिंग कहते हैं, अगर वो भी करेगा तो उसके शोल्डर्स में और हाथ में दर्द होगा। और उन्हें मालूम था कि क्ले छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो भी एक माने हुए खिलाड़ी हैं, उनको हराना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने लगातार वो करा और सैंड बैग्स के ऊपर पूरे पूरे दिन उन्होंने कोशिश करी, और ये माना जाता था कि अगर फोरमैन का किसी को एक राइट पड़ गया तो जैसे वो हिंदी फिल्म में डायलॉग है कि उठता नहीं उठ जाता है, वही वाली बात होनी थी बस, लेकिन वो मुकाबला दूसरा ही नतीजा निकला उसका।
इस मुकाबले के बाद मोहम्मद अली करीब 4 सालों तक विश्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन रहे, और तब तक उनकी तरह पूरी दुनिया भी ये मान चुकी थी कि मोहम्मद अली वास्तव में महानतम थे। 1983 में बॉक्सिंग से संन्यास लेने के बाद मोहम्मद अली भारत आए थे। नॉरिस प्रीतम याद करते हैं,
उस वक्त जो राजीव गांधी थे उन वो बड़े स्पोर्ट माइंडेड थे, और उन्होंने कुछ लोगों से कह सुन के बाहर के इनको एक विजिट के लिए बुलाया था, और जो नेशनल स्टेडियम जो दिल्ली का जो जिसको आप ध्यानचंद स्टेडियम जहाँ एस्ट्रोटर्फ है तब ये एथलेटिक ट्रैक था, और बीच में घास का मैदान था, वहाँ एक ओपन एयर स्टेज लगाया गया था जिसपे अली का एग्जीबिशन मैच होना था। कौर सिंह उस वक्त हमारे हैवी वेट चैम्पियन थे, और जब कौर सिंह के साथ उनकी बाउट हुई तो अली खाली अपना लेफ्ट हैंड कौर सिंह की तरफ सामने घुमाए जा रहे थे, इसे स्प्रे कर रहे थे, और वो कौर सिंह मुक्के मारे जा रहा था तो उनके नहीं पहुंच रहे थे क्योंकि अली का हाथ की लंबाई इतनी थी कि वो कौर सिंह वहाँ नहीं पहुंच रहा था, और वो जो रिंग साइड में लोग खड़े थे अली जो उनके बड़े मुंह वाली बात है उनसे बातें कर रहे थे, उसमें मैं भी था वहाँ पे। बाउट के बाद जब हम लोग ऊपर चढ़े उनको देखने तो मैंने उनकी पसली में भी थोड़ा सा उंगली मार के देखा, क्योंकि मेरे साथ ही एक बच्चा बैठा हुआ था, वो कह रहा था अंकल ये देखिए कि ये लोहे का इंसान है या सचमुच का इंसान है, तो उन्होंने ज़ोर से एक ऐसे फेंक करा मुक्का, अगर मुझे पड़ जाता तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा हुआ होता था। और बाद में मुझे लुईविल में केंटकी में भी मौका मिला उनका म्यूजियम देखने का, वहाँ पे इस बाउट को बहुत तरजीह दी जाती है, वहाँ पे भी लोग मानते हैं कि ये उनकी सेकंड बेस्ट बाउट मानी जाती है।
Catch me if you can. Rehan Fadel, BBC, Delhi.